समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मिठास और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, आज की सुबह एक नया पन्ना है, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और आज क्या करना है उस पर मुस्कुराइए। कहते हैं ना कि अगर दिन की पहली चाय कड़क और मुस्कुराहट सच्ची हो तो दिन अपने आप बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं नए दिन का। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो जया एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज सवेरे। मी एंड जया, वी आर ऑल स्माइल्स एंड वेरी थ्रिल्ड टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम एज जया सेड। एंड वेल यस, वी आर बिगिनिंग विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द फर्स्ट सेगमेंट ओनली, यू लाइक दम, वी आर 100% श्योर ऑफ दैट लिसनर्स। वी ऑल्सो हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मेट्रो सिटीज एज वेल। एंड देन टुडे इज 16th of May 2026, वील ऑल्सो फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर द हिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू टुडे। First, let us begin with the headlines.
तो संयुक्त अरब अमीरात और यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं।
कंटिन्यूइंग विद दैट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन द नेदरलैंड्स लेट लास्ट नाइट ऑन द सेकंड लेग ऑफ हिज 5 नेशन टूर एम्ड एट डीपनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज विद यूरोपियन नेशंस। मिस्टर मोदी वॉज रिसीव्ड बाय द डच फॉरेन मिनिस्टर तुम बेरेंसन अपॉन हिज अराइवल एट एम्स्टरडम एयरपोर्ट। Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent, covering the Prime Minister's Netherlands visit, has filed this report.
During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destination as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shoshu Sharma for Akashwani from The Hague, Netherlands.
After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. On the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. He will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. On Tuesday, Mr. Modi will take part in the third Indian-Nordic summit. On Tuesday, Mr. Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland, Kristrún Frodastóttir, and Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, for the summit. In the final leg of his visit, the Prime Minister will reach Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni.
सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसके साथ ही शगुन नीट UG की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। 21 जून को नीट UG की परीक्षा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है।
वेल, इन जम्मू एंड कश्मीर द 3-डे हिस्टोरिकल एनुअल मुंगरी मेला विच इज ऑल्सो नोन एज शिव पार्वती मेला इट कमेंस्ड यस्टरडे एट सर डबर एरिया ऑफ ब्लॉक मुंगरी इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सो द पिलग्रिम्स एंड नेटिव्स विजिटेड द शिव पार्वती केव श्राइन टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती। सो इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट पीपल फ्रॉम भोमाग, पंचारी, उधमपुर, चिननी एंड रामनगर एरियाज ऑफ द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज फ्रॉम रियासी, रामबन एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स कन्वर्ज सर डबर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट दिस मेला एंड पे ओबेसेंस टू भगवान शिव इन द नेचुरली फॉर्म्ड शिव पार्वती केव श्राइन, अ वंडरफुल साइट। सो देयर लोकल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटिंग सिंटिलेटिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दे प्रेजेंटेड सिंटिलेटिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेज ऑन द फर्स्ट डे। आई वाज टेलिंग यू अबाउट शिव पार्वती मेला।
और इसी तरह की कुछ अच्छी खबर भी है मेरे पास मध्य प्रदेश से, जहां श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कल 2 और मादा चीतों को जंगल में छोड़ा गया है। और इसके साथ ही कूनो में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की कुल संख्या 16 हो गई है। और ये दोनों मादा चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में शामिल हैं। इन्हें सफलतापूर्वक क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया है। इससे पहले 13 मई को भी एक मादा चीते को जंगल में छोड़ा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के फील्ड निदेशक ने बताया है कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल के वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए उन्नत रेडियो टेलीमेट्री प्रणाली और विशेष क्षेत्र दल तैनात किए गए हैं। और पता है शगुन, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया था।
यस, एग्जैक्टली। सो यू वर टेलिंग अबाउट बोथ द फीमेल चीतर्स, दे आर अमंग द 9 ब्रॉट फ्रॉम बोत्सवाना in February 2026. So they have been gradually released after successfully completing their quarantine period. So earlier one female cheetah was also released on May 13th, and you were telling about Project Cheetah launched by Prime Minister Narendra Modi in 2022. Now let's stretch our boundaries a little. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. So in a social media post, Mr. Pigott said that the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. Now in sports. Over to sports now. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shufflers Noorizuddin and Gosei Fay in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the quarter-final clash yesterday. Meanwhile, other ace Indian shuttlers including PV Sindhu and Lakshya Sen bowed out of the tournament. Sindhu lost 21-19, 18-21, 15-21 to world number 3 Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles quarter-final.
और शकुन, ये जो प्रमुख खबरों की का सेक्शन खत्म करने से पहले हम बता दें कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आकाशवाणी अगरतला केंद्र द्वारा कल शाम सुकांता अकादमी सभागार में एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी समारोह के समन्वय में आयोजित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट डॉ विशाल कुमार ने सीजीएसटी अगरतला कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त और श्री सैमुअल एस वाईफाई की उपस्थिति में किया गया। और जो संगीत संध्या में ना पंकज कुमार दास ने जो गिटार पर मनमोहक प्रस्तुति दी और जिनका तबला पर जो देवज्योति दास गुप्ता ने भी बहुत अच्छा संगम दिया है जो सुनने में बेहद रोमांचक था।
वेल यस, सो गाइडेड बाय द मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट आकाशवाणी इज एस्टैब्लिशमेंट ऑन June 8, 1936 This celebration highlighted Akashvani's enduring legacy as the nation's most credible broadcaster.
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के समाचारों का।
श्योरली,
तो सबसे पहले बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत को कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं, जिसमें बैठने की क्षमता 35 यात्रियों की होगी। इसमें बहुत सारे जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं और इस बस का जो किराया है ना शगुन, ये महज 10 से 15 रूपये के बीच में रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यूपीआई और नकद भुगतान के विकल्पों के साथ इसमें यात्री टिकट खरीद सकते हैं और यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भी बस सेवा संचालित की जाएगी। और इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का जो अभियान है वो 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह जाए।
नाउ वी विल हेड टू चेन्नई।
या
Tamil Nadu government issued a gazette notification declaring Trichy's constituency as vacant in the wake of Chief Minister Joseph Vijay resigning the seat he contested in 2 seats and retained the Perambur seat. According to the gazette notification issued by Appavu, the earlier speaker, on May 10, he accepted Vijay's resignation as per Article 193B of the Indian Constitution and then declared the seat vacant from the date of resignation. The notification would be sent to the ECI and elections will be held for Trichy East within 6 months. Another update from Chennai. So at least 17 foreign nationals were detained at Chennai and Madurai airports for allegedly casting their votes in the recently held assembly elections in Tamil Nadu. So immigration officials detained them after noticing the indelible ink marks on their fingers during passport checks. While 15 of them were apprehended at Chennai airport over the past few days when they were about to return to their respective countries. 2 were detained at Madurai airport. The passengers were natives of Tamil Nadu and Puducherry.
और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में आज से जनगणना 2027 के अंतर्गत घर सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान शुरू होगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रश्नों को पुनः अधिसूचित किया है, जिन पर 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सर्वेक्षण किया जाएगा। जनगणना कर्मी प्रत्येक घर जाकर अपने आधिकारिक मोबाइल उपकरणों में स्थापित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। जिन नागरिकों ने अपने घरों के लिए स्वगणना पूरी कर ली है उनसे अनुरोध किया गया है कि सत्यापन और प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए वे जनगणना कर्मियों के साथ अपना स्वगणना पहचान यानी कि आईडी नंबर साझा करेंगे। राज्य सरकार ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत और घरेलू जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। एक और अपडेट है मुंबई से जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है शगुन, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में देश भर में लगभग 22,500 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी होना ये खराब चीज है, और हाँ इतने मामले सामने आए, उनको पकड़े गए हैं कुछ चीजें, तो ये बात अच्छी है। तो कल मुंबई में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी डीओटी में, के मुंबई एलएसए के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष पाठक ने बताया है उसमें कि इनमें महाराष्ट्र से दर्ज 1100 करोड़ रुपए के मामले भी शामिल हैं, और 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर श्री पाठक ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर 30 लाख शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि जो डीओटी ने 34 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, 22 लाख फर्जी हैंडसेट को ब्लॉक किए हैं, और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 1697 लाख से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट को निष्क्रिय किए गए हैं। इसके अलावा 59 लाख से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है, जिससे 1200 से अधिक संगठनों, जिनमें बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं, उसको जोड़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान को रोका गया है। ये अच्छी चीज हुई है इसमें। और इसके साथ ही नागरिकों से ये आग्रह भी किया गया है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध संदेशों, कॉल्स या फिर इसी तरह के संचार पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
यस, एंड well, we'll head now to Bengaluru, where the idea of an annual Bengaluru Drone Festival is gaining traction. So Karnataka Minister for Electronics, IT and Biotechnology Priyank Kharge has expressed a strong commitment to encourage drone economy. The state, he informed, will adopt necessary infrastructure, policy and real-world adoption mechanisms to contribute significantly to India's drone economy. And this, actually the Bengaluru Drone Festival, he says, can have drone racing, hackathons, exhibitions and display shows. He was actually speaking after a high-level meeting with the drone industry in Bengaluru yesterday. The minister also spoke about creating shared testing facilities, simplifying regulatory pathways and enabling a strong ecosystem for startups and industry to innovate and scale up their operations. The Karnataka Medical Education Additional Chief Secretary Mohammed Mohsin has announced that guidelines for a better and effective use of artificial intelligence will be released within his department.
और अब चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के चिकित्सा अधीक्षकों और प्राचार्यों ने भी भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन और प्रगति पर भी चर्चा की गई।
हैदराबाद नाउ, वेल द सिटी विटनेस्ड रोड शो इन हैदराबाद टू प्रमोट द फार्मा मैकटेक एंड लैब नेक्स्ट Expo 2026. The Engineering Export Promotion Council of India held a roadshow. Actually, the expo will be held in September this year in New Delhi. It will showcase pharmaceutical machinery and laboratory equipment from across India. So the preparations, they were also held there, and the event will bring together manufacturers, exporters and global buyers. And well, India exports pharmaceutical machinery but imports more than it sells. The roadshow discussed new technologies like smart manufacturing and automation. So this was all about the metro cities.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी में आज मौसम हालांकि साफ रहेगा, लेकिन गर्मी का जो कहर है ना शगुन, वो जारी रहेगा। जो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
फ्रॉम हीट,
और इसी तरह से मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकता है, गरज के साथ चमक की भी संभावना है, और बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, हालांकि गर्मी वहां भी है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल।
Well, beginning with Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. There is possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 27 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 33 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was around 23 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad, again, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature, will be around 29 degrees Celsius and it's quite hot. The maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad. Jaya.
और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की है। आज 16 मई 2026 है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति और कला में प्रकाश की जो भूमिका है ना, उसकी महत्ता को जानने के लिए हर साल 16 मई को यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
Well, yes, hundreds of light, science, technology, educational and the other educational events, they take place across more than 40 countries. Well, yes, this is all about exploring global initiatives and access educational resources directly through the UNESCO International Day of Light portal as well. This date marks the anniversary of the first successful operation of the laser by physicist and engineer Theodore Maiman in the year 1960.
Yeah, और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ना, वो 2018 को मनाया गया था।
So let's tell our listeners about the theme as well. The focus will be on light for a sustainable future.
बिल्कुल।
Now let's start with the years. In the year 1929, the first ever Academy Awards were handed out in Hollywood, California, with about 270 people in attendance. In 1966, the political and social campaign known as the Cultural Revolution officially began in China with the publication of the May 16 notification issued by Mao Zedong.
और इसके कुछ दिन बाद आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और राजशाही इस दिन समाप्त हुई थी और ये 22वें राज्य के रूप में
Yes, 22nd state. In the same year, Jaya, Japanese mountaineer Junko Tabai made history as the first woman to reach the summit of Mount Everest. And this milestone stands as one of the most famous and inspiring events on this day.
और आज ही के दिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पता नहीं कितने लोगों के प्रेरणा रहे हैं,
जी,
उन्होंने पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
In 1991, Queen Elizabeth II of the United Kingdom addressed a joint session of the United States Congress, becoming the first British monarch to do so.
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं।
We are beginning with, well, first event, let me start with that, the birth centenary celebrations and a one-day national seminar on contributions of Acharya Sri Dinesh Chandra Joshi in the field of Sanskrit and Indian culture in New Delhi yesterday. The Ministry of Culture actually organized the birth centenary celebrations. The ministry said that several commemorative programs, academic seminars, cultural events, exhibitions and spiritual gatherings across the country have been held since the 11th of this month and it will last till 11th of April next year in honor of eminent Sanskrit scholar. It stated that despite the severe hardships of a remote mountainous region and limited resources, Acharya Joshi emerged as a radiant torchbearer of Indian culture through his scholarship, spiritual discipline and unwavering determination.
तो इसके साथ हम अब याद करते हैं कि आज किन की जयंती है, पुण्यतिथि है या जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और आदिवासी नेता भीमबर देवरी को। आज उनकी जयंती है और जिन्हें मुख्य रूप से असम को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, उसमें विलय होने से बचाया था उन्होंने और वहां के स्वदेशी जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शुरूआती सुनहरे दौर के एक अत्यंत सम्मानित और दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता रहे फणी मजुमदार को। आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी और चीनी यानी कि सिंगापुर की जो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं उनमें भी फिल्मों का निर्माण किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। फणी मजुमदार को समाज का एक यथार्थ और संगीतमय ड्रामा को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारने के लिए याद किया जाता है। 1938 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म स्ट्रीट सिंगर उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महान गायक अभिनेता केएल सहगल और खानन देवी अभिनीत इस फिल्म का गाना बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए आज भी अमर है।
Well, yes, Fani Majumdar will always be remembered as a legendary filmmaker and screenwriter who helped actually shape early Indian cinema with films you were talking about, Street Singer. Others include Tamasha, Goonj, Akashdeep, Kajal and Oonche Log.
Yeah, bilkul. Aur ab aapne Oonche Log ki baat kar di hai, to sunte hain uska ek sangeet. Kaisi tune rachi Bhagwan. तो जो फणी मजुमदार है ना, उनके फिल्मी केवल कहानियों के लिए नहीं बल्कि सदाबहार और सुरीली गीतों के लिए भी जाने जाते हैं. और आरती फिल्म का ये गीत भी बहुत ही आनंदमय है.
Today, listeners, we are also remembering Django Reinhardt, the jazz guitarist and composer. Well, he was one of the first major jazz talents to emerge in Europe and has been hailed as one of its most significant exponents. His most popular compositions have been standards within the gypsy jazz, including Minor Swing, and Minor Swing you are listening to it in the background as well. Others include Swing 42. So let's listen in to this composition.
आज ही जयंती है भारत की एक बेहद सम्मानित वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता विजया मुले की. फिल्म जगत में उन्हें प्यार से अक्का यानी कि बड़ी बहन कहा जाता है. और दूरदर्शन पर जो बचपन बिताने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें हमेशा एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कालजयी और शिक्षाप्रद एनिमेटेड गीत की रचना के लिए याद रखती है.
दीदी दीदी वो देखो अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ एक चिड़िया एक एक सबके अनेक चिड़िया.
एक अनेक और एकता विजय मुले द्वारा निर्देशित इस लिखित बेहद ही जो प्रसिद्ध शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है और भारत सरकार ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए इसे तैयार करवाया था. और इस फिल्म का ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है जो बच्चों को एकता विविधता में एकता की सीख देता आया.
राइटली सेड. वेल शी इज विजय मुले रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द फिल्म सोसाइटी मूवमेंट इन इंडिया, रिमेम्बर्ड फॉर हर डॉक्यूमेंट्रीज एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन एज वेल.
और आज जयंती है पद्मश्री माणिक वर्मा की. वो भारत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिग्गज शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका थी.
So listeners, today it's also Vicky Kaushal's birthday, the actor. Well, he has worked across a range of genres.
क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं?
Yes sir.
क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
Yes sir.
Commanders, who are we?
Indian Army sir.
How is the Josh?
Hi sir.
How is the Josh?
Hi sir.
I said how is the Josh?
Hi sir.
श्रोताओं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।
नमस्कार।